हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वसुंधरा ने कमरे से बाहर झांक कर देखा, क्योंकि उसका ध्यान तो वीरेश में ही लगा हुआ है। लेकिन अपनी माँ और चंद्रिका के सामने वो ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि ये बात वो खुद भी नहीं समझ पा रही कि उसे वीरेश की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। वीरेश के अलावा महल में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है कि वहां पर कितनी सारी काली शक्तियां एक साथ हमला कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए। लेकिन वीरेश अपनी पूरी ताकत लगा रहा है जिससे कि वो लोग महल में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन फिर भी उसका कवच तोड़कर कुछ शक्तियां महल में प्रवेश कर गईं और वो सब राजकुमारी की तरफ ही बढ़ रही हैं। जितने भी साधारण सिपाही और सैनिक हैं, वो सब ना ही इन शैतानी शक्तियों को देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, तो उनका सामना करना या उनसे किसी की रक्षा करना उनके बस की बात ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, इससे सभी को अंदाजा हो गया है कि आज रात के इस समय महल पर आक्रमण का एक ही मकसद है, और वो है राजकुमारी को वहां से लेकर जाना। इसीलिए राजा और सभी इतना घबराए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि वीरेश वसुंधरा को बचा लेगा, लेकिन इस वक्त उसकी भी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वसुंधरा कमरे के दरवाजे के पास आकर बाहर झांकती हुई उसकी तरफ देख रही है, जबकि वीरेश की आंखें बंद हैं और वो अपनी शक्तियों को और बढ़ाने की कोशिश में लगा है। लेकिन उसकी ऊर्जा भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि काफी देर से वो अकेला ही इन शक्तियों से लड़ रहा है, और वो नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा और अलग अलग प्रकार की हैं। अतृप्त आत्माओं, प्रेत और पिशाचों को शैतान के उस भयानक रूप ने अपने वश में कर रखा है। लेकिन वो किसी को भी इस बारे में बता नहीं सकता कि उसकी हालत खराब हो रही है और अब उसे आराम चाहिए अपनी शक्तियों को दोबारा से अर्जित करने के लिए। लेकिन ऐसे वक्त में वो आराम करना तो दूर, आराम के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान और ध्यान से ही उसकी शक्तियां बढ़ती हैं और वापस से उसके शरीर में ऊर्जा आती है। लेकिन अभी उसके पास इन सब में से किसी भी चीज का वक्त नहीं है, और वो किसी को इस बारे में बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पर किसी को भी ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसी चीजों को सिर्फ उसके साथ ही और आश्रम से जुड़े हुए लोग ही समझ सकते हैं, खासकर उसके गुरुजी और आश्रम में रहने वाले दूसरे गुरु जो उन्हें ये सब सिखाते हैं। वसुंधरा, आप कहाँ जा रही हैं? वापस चलिए कमरे के अंदर, आपने सुना नहीं था वीरेश ने आपसे क्या कहा था? रानी कादंबरी ने वसुंधरा को कमरे के दरवाजे से बाहर जाते हुए देखकर उसे पीछे से आवाज लगाई, तो अपनी माँ की बात सुनकर वसुंधरा वहां पर ही रुक गई। चंद्रिका भी उसके पीछे ही जा रही थी, शायद उसे रोकने के लिए, लेकिन जब वसुंधरा ने अपनी माँ की आवाज सुनी तो वो दरवाजे के पास ही रुक गई, और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उससे कुछ दूर चंद्रिका भी अपनी जगह पर ही रुक गई और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस कमरे में अंदर की तरफ ले आई। वसुंधरा ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और उसके माँ फिर से उसे समझाने लगी, लेकिन उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उन लोगों ने जब बाहर की तरफ देखा तो वहां पर एक भयानक शक्ल का बूढ़ा सा कुबड़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, और आगे की तरफ आते हुए उसने वीरेश को देखते ही उस पर हमला किया, और इस तरह पीछे से अचानक हुए हमले से वीरेश संभल नहीं पाया, क्योंकि पहले ही वो काफी कमजोर हो चुका था। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी आगे की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी सारी शक्तियां बेकार हैं मेरे मालिक के सामने, और तुम्हारे जैसा तुच्छ इंसान कभी भी महान शैतानी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए हट जाओ हमारे रास्ते से अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। उसके इस तरह से पीछ पीछे अचानक हमला करने पर वीरेश लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ भी नीचे जमीन से आ लगे और उसके इर्द गिर्द बना वो रक्षा कवच भी टूट गया। वीरेश के पहले ही शरीर पर काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थीं उन काली शक्तियों के सीधे हमले की वजह से, क्योंकि उसके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही बुरा असर होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से दिव्य शक्तियों का मालिक है। लगता है जान तो तुम्हें अपनी प्यारी नहीं है, और तुम यहाँ तक आए कैसे? मेरे होते हुए तो तुम राजकुमारी तक कभी पहुँच नहीं पाओगे, इसलिए वापस चले जाओ यहाँ से। वीरेश भी दोबारा उठकर खड़े होते हुए उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास से बोला। तभी उस आदमी ने अजीब तरह से कहा, राजकुमारी को तो हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे, क्योंकि आज मेरे मालिक का इतने सालों का इंतजार पूरा होने वाला है और तुम कभी भी हमसे जीत नहीं सकते लड़के। इतना बोलकर वो बूढ़ा कुबड़ा आदमी हंसने लगा। वो कुबड़ा और कोई नहीं, शैतान का सेवक भानु है, लेकिन महारानी वसुंधरा और चंद्रिका में से कोई भी उसे नहीं पहचानता है। वसुंधरा के जन्म के वक्त जब वो यहाँ पर महल में आया था तब सिर्फ राजा और कुछ मंत्रियों से ही उसका सामना हुआ था और वही लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन फिलहाल उनमें से कोई भी वहाँ पर महल में उस जगह पर नहीं है। दूसरी तरफ बाहर जहाँ पर राजा और बाकी सारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा काली धुंध है जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो सब अपनी अपनी तरफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो भयानक हंसी की आवाज़ जो अब तक उन लोगों से बात कर रही थी वो फिर से वहाँ पर गूंजी और उस हंसी की आवाज़ में सभी को बहुत कुछ अजीब सा महसूस हुआ और कुछ डर भी लगा, लेकिन तभी उनके सामने दो पीली आँख जैसी आँखें उस काले धुनी के बीच में से चमकती हुई नज़र आईं और एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा मजबूत व्यक्तित्व का आदमी हवा में तैरता हुआ नज़र आया। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे, उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, उसके गर्दन तक आते लंबे बाल थे और चेहरा दिखने में आकर्षक लेकिन काफी भयानक लग रहा था। उसकी पतली नाक और दिखने में अच्छा खासा सुंदर चेहरा था, लेकिन जिस तरह से अपनी जलती हुई निगाहों से घूरकर वो सामने खड़े सारे लोगों को देख रहा था, किसी की भी सांस गले में अटक जाए, क्योंकि उसके चेहरे से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी और उसी तरह की नकारात्मक भयानक ऊर्जा उसके आसपास चारों तरफ भी फैली हुई थी। उसे देखकर राजा के मुँह से एकदम ही निकला, विक्रांत, नहीं तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है महाराज आपने, आखिर इसीलिए तो आप महाराज हैं। इतना बोलकर वो फिर से हंसने लगा और उसकी हंसी राजा और बाकी सब के कानों में किसी तीर की तरह चुभ रही है, क्योंकि ये हंसी उसकी जीत की खुशी भी है जिसे वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो हंस रहा था तभी नीचे खड़े सिपाहियों में से एक ने तीर से उस पर हमला किया, लेकिन वो तीर उस तक पहुँचने से पहले ही जमीन पर गिर गया और उसे छू भी नहीं पाया। वो सब एक तरह की बेवकूफ़ी कर रहे थे उस पर हमला करने की कोशिश करके। उन लोगों में से और भी कुछ लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, क्योंकि वो हवा में तैर रहा था काफ़ी ऊंचाई पर, तो वो लोग नज़र उठाकर उसे देख रहे थे लेकिन उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। बेवकूफ हो तुम लोग, मुझे छू भी नहीं सकते और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना बोलते हुए विक्रांत ने घूर कर उन लोगों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है, और जैसे ही उसने उन लोगों की तरफ देखा उनके गले एकदम ही कस गए और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनका गला दबाकर उन्हें ऊपर हवा में उठा रहा है, और राजा को छोड़कर बाकी उसके आसपास खड़े सारे लोगों का यही हाल था।
और उनकी सांसें गले में अटक गईं और वो लोग बुरी तरह से छटपटाने लगे और उनके अपने हाथ ही गले पर पहुंच गए, जैसे कि किसी से वो सब अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहे हों। इस बीच उनकी काफी तेज दर्द भरी चीखें निकल रही हैं, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप भी अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा और उसे बहुत ही बेबसी महसूस हो रही थी। कहानी जारी रहेगी।